ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे, 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आप सब फिजिकल एक्सरसाइज सिखाते हैं कि 1 मिनट भी अगर नेक को थोड़ा सा टर्न कर लें, हाथ को थोड़ा सा घुमा लें, आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक कर लें, तो बॉडी कैसी रहती है? फिट रहती है। एक होता है 1 घंटा एक्सरसाइज करना, और एक होता है बीच बीच में 1 मिनट की एक्सरसाइज कर लेना। तो जैसे बीच बीच में 1 मिनट की बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही बीच बीच में 1 सेकेंड की सोल की एक्सरसाइज करेंगे तो सोल फिटनेस क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमें कहाँ से जाना है? हमें लेफ्ट हैंड से कहाँ जाना है? राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड पे तो बड़ी लंबी लिस्ट आ गई थी सुबह, और उसमें भी अभी तो बहुत सारी बाकी हैं जो लेफ्ट हैंड पे आ गई थी। अगर हम एक एक संस्कार पे वर्क करेंगे, गुस्सा कम करना है, गुस्सा खत्म करना है, चिंता नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, डर नहीं, वो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन ईजी चीज है सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। और जैसे ही आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, जो लेफ्ट हैंड वाले संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। तो 1 मिनट की एक्सरसाइज देखें, ब्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, खुद को देखें। मैं आत्मा, जस्ट देखना है। मैं आत्मा, अनेक संकल्प पकड़ना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल। सो क्रिएट एंड होल्ड, विजुअलाइज, क्रिएट अ थॉट, होल्ड द थॉट। वो चमकता हुआ सितारा दिखाई देने लगेगा जहां हम तिलक लगाते हैं, और सिर्फ एक संकल्प, I am a peaceful being. In every scene of life, I am a peaceful being. With every person, हर एक रिश्ते में कोई कैसा भी व्यवहार करे, I am a peaceful being. अब इस शांत स्थिति में ये चेक करें कि हमारे जो रिश्ते हैं, चाहे वो घर पर है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, उन रिश्तों में जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो क्या होती हैं? वो कौन से संस्कार होते हैं जो हमारे रिश्तों की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आते हैं, जो हमारे रिश्तों की एनर्जी को जितना हम स्मूथ चाहते हैं वो कभी कभी उसमें गांठें आ जाती हैं? संस्कार चेक करना है, चाहे वो हमारी नेचर हो, चाहे वो उनकी नेचर हो, कौन सा संस्कार एक रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। और अगर डिटैच्ड होकर चेक करें, अपना संस्कार देखें कि मेरा कौन सा स्वभाव, मेरा कौन सा बिहेवियर मेरे रिश्ते की एनर्जी को नीचे लेकर आता है। या रिश्ते में कोई बात जो मेरी एनर्जी को नीचे लेकर आती है, एक होता है हमारी एनर्जी रिश्ते को नीचे लेकर आती है, और एक होता है उस कनेक्शन में कोई ऐसी बात होती है जो हमारी एनर्जी को नीचे लेकर आती है। बहुत स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना है, मोटा मोटा नहीं, सटल चेकिंग। कौन सी नेचर, कौन सा व्यवहार, कौन सा मेरा एक स्पेसिफिक थॉट पैटर्न कोई भी चीज का जब कारण मिल जाता है तो उसका सोल्यूशन निकालना इजी है। अब अगर मिल गया है तो उसको लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट आउट। हर एक लिखे क्या निकला है। ये किसी को बताना नहीं है हमें, हमें सिर्फ लिखना है। क्या लगता है मेरी कौन सी नेचर, मेरा कौन सा संस्कार, थोड़ा सा इतना सा चेंज किया रिश्ता बदल जाएगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा शिफ्ट। सभी लिखेंगे, अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद बनानी होती है इसमें। और अगर नोटबुक नहीं है तो अपने फोन में टाइप करेंगे। जब हम बैठते हैं हॉल में, सभी बीके भाई बहने ध्यान रखेंगे कि आप होस्ट हैं, आप पीछे बैठेंगे, मेहमान आगे बैठेंगे हमेशा। अभी के लिए नहीं, आगे के सेशंस में ध्यान रखना है। ओके, एनीबडी वांट्स टू शेयर, कौन सा संस्कार, कौन सी बात रिश्तों में आती है जो रिश्ते को थोड़ा जितना स्मूथ होना चाहिए उतना नहीं होने देती है, कौन सी बात आती है? ईगो तो पूरी चीज का, ईगो इज लाइक एवरीथिंग। हर चीज जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारे ईगो से निकल रही है। हमें ईगो की डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन लिख के रखें, इस 3 दिन में इस डेफिनेशन पर वर्क करेंगे। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। इसमें कई वर्ड्स आ गए हैं, एक वर्ड आया है अटैचमेंट, दूसरा वर्ड आया है रॉन्ग इमेज, और तीसरा वर्ड आया रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। अगला जो सेशन है इसके बाद वो आपको जरूर ध्यान से अटेंड करना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द राइट इमेज ऑफ योर सेल्फ। तो वी ग्रोन अप बिलीविंग कि मैं ये शरीर हूं, मैं रिश्ता हूं, मैं रोल हूं, मैं पोजिशन हूं, मैं डेजिग्नेशन हूं, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ मेरा है। सुबह शीशे में जो दिखता है वो क्या है? सुबह जो शीशे में दिखता है वो क्या है? आप तो सारा दिन ऑपरेट करते हैं, कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। जब आप किसी पेशेंट को ओटी में लेकर जाते हैं तो आप कहते हैं सिस्टर, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए, ऐसे ही कहते हैं ना। उस दिन जो उस पेशेंट के फैमिली आती है वो कहती है, डॉक्टर साहब हमारे फादर को आप बचा लेना, हमारे बच्चे को आप ठीक कर देना। अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर आप कहते हैं, सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए। राइट है ये वो कैप्टरी, ऐसा ही बोलते हैं आप ऐसे ही बोलते हैं। फैमिली आती है और कहती है, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं? 2 घंटा पहले वो बोल रहे थे आप हमारे पापा का ध्यान रखना, आप उनको ठीक कर देना, और अब वो कह रहे हैं कि बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। 2 घंटा पहले आप कह रहे थे मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाना, अब आप कह रहे हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ये क्या हुआ, चेंज क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ? इसका मतलब जो अंदर गया था कुछ और जो रह गया वो सिर्फ शरीर है। राइट, अब आप उसको अपने नाम से भी उसके नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। और जो बॉडी होती है उसको फिर कहा जाता है अर्थी, कहते हैं ना अर्थी, तो अर्थी मतलब अरथी, अरथी। रथी कौन है? रथ को चलाने वाला रथी है, और जिस क्षण वो रथी निकल जाता है तो उसको अरथी कहते हैं। तो ये बॉडी क्या है? हमारा रथ है। तो शीशे में क्या दिखाई देता है, शीशे में क्या दिखाई देता है? मेरा कॉस्ट्यूम। इसको चोला भी कहते हैं कि हमने ये चोला पहना, इस चोले को छोड़ दिया है। तो कल से जब शीशे में देखेंगे तो ये नहीं कहना मैं कैसे दिख रही हूं, क्योंकि मैं नहीं दिखती शीशे में। शीशे में कौन दिखता है? ये बोल सकते हैं मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन हम शीशे में देखते हैं और कहते हैं मैं कैसी दिख रही हूं, फिर हम कहते हैं मैं मोटी हो गई। पता है हम मोटे कब होते हैं? हम मोटे कब होते हैं? जब हम लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करते हैं हम मोटे हो जाते हैं। स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, गुस्सा क्रिएट करते हैं, चिंता, बोझ बोझ बोझ, दैट इज व्हेन द सोल गेट्स हैवी। और जब हम राइट हैंड से ऑपरेट करते हैं तो सोल क्या हो जाती है, ऑपोजिट क्या है, लाइट। आपको यहाँ के लाइट फील हो रहा है? ये लाइट वाइब्रेशन चेंज हुई, लाइट फील होगा। मैं मोटी और पतली शीशे में नहीं दिखाई देता, शरीर मोटा और पतला दिखाई देता है। मैं मोटी या पतली मतलब मैं आत्मा हैवी हूं या मैं आत्मा लाइट हूं। तो इसीलिए ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, मतलब जब भी हम मैं आत्मा हूं इसके अलावा किसी भी और कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ईगो है। मैं डॉक्टर हूं, ये ईगो है। मैं आत्मा डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूं, ये सोल कॉन्शियस है। मैं मदर हूं, ये ईगो है, क्योंकि आप मदर नहीं हैं, आप आत्मा हैं जो मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये सोल कॉन्शियस है। ये मेरा बच्चा है, ये ईगो है। ये आत्मा है जो मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, ये सोल कॉन्शियस है। तो जैसे ही मैं गलत होगा और मेरा अटैचमेंट का होगा तो सारी वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट हो जाने वाली हैं, लेफ्ट हैंड वाली। तो इस लाइन को पकड़ के रखना है, इस 2-3 दिन में इसको डीपर डीपर समझेंगे। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। और जितने भी हमने लेफ्ट हैंड पे आज सुबह इमोशंस और संस्कार रखे थे वो हमेशा ईगो से ही निकलेंगे, और जितने हमने राइट हैंड पे रखे थे, इसलिए अभी हमने देखा अगर हम 1 मिनट की एक्सरसाइज भी करते हैं मैं आत्मा हूं और इसको होल्ड करते हैं तो हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपको एक एक संस्कार पे वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस से ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट होना है। जैसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट होते हैं वो प्योरिटी, वो प्यार, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो अपने आप आने वाला है। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन वन संस्कार। इस जैसे शरीर में ये भी वीक है, ये भी वीक है, इधर भी दर्द हो रहा है, उधर भी दर्द हो रहा है, एक एक चीज पे वर्क नहीं करना है, पूरी बॉडी का स्टैमिना बढ़ा दो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सारे जो नेगेटिव संस्कार्स हैं, ये सोल पावर कम होने की निशानी है. एंड सोल पावर कम मतलब ईगो ज्यादा, ईगो ज्यादा. तो ईगो तो एक चीज है ही रिश्ते में, और कुछ कौन सी चीज है यार? मैं जनरली, हाँ जी थोड़ा सा जोर से बोलिए. अच्छा, लिसनिंग कम है. ओके, तो लिख लीजिए फिर उसको. तो बहुत, वो तो बहुत इजी है करना, वो तो बहुत इजी है करना. और बताइए, अंडरस्टैंडिंग भी कम है. कौन किसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है? किस किस के बच्चे? ओके, थोड़ा सा माइंड को रिवाइंड कीजिए. जब वो बच्चा आपकी गोदी में था, बोलना नहीं आता था उसको, मतलब आपकी भाषा बोलना नहीं आता था, छोटा बच्चा, वो कम्युनिकेशन याद है कैसी होती है वो छोटे बच्चे के साथ कैसी होती थी? ना आप उसकी भाषा समझ सकते हैं, ना वो आपकी भाषा समझ सकता है, लेकिन आप अगर एक देखो कि एनर्जी एक्सचेंज जो हो रहा होता है वो कैसा हो रहा होता है, कैसा हो रहा होता है, कितनी प्योरिटी होती है उस एनर्जी एक्सचेंज के अंदर. घंटों घंटों हम एक दूसरे से बातें करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं. लेकिन जब थोड़े बड़े होकर एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, फिर कहते हैं आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, फिर आई ऑल्सो कांट अंडरस्टैंड यू, फिर हम कहते हैं जेनरेशन गैप, इट्स ओके, नहीं समझ में आने वाला है. तब क्यों समझ में आ रहा था, अब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या फर्क था, क्या फर्क था? आपको पता है हाईएस्ट सोल कॉन्शियस किसकी होती है? एक बच्चे की, क्योंकि बच्चे के पास अभी ईगो की कोई लेयर डेवलप हुई ही नहीं है. तो अगर आप एक बच्चे को देखेंगे, उसकी बचपन की फोटो को देखिएगा, मतलब अपनी भी बचपन की फोटो को देख सकते हैं, प्योरिटी दिखाई देती है चेहरे के ऊपर, दिखाई देती है प्योरिटी चेहरे पर. हाँ, कोई अपने बेबी को लेकर मार्केट में भी जाता है तो दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं उस बच्चे की तरफ, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं. गाड़ी में हम जा रहे होते हैं, दूसरी गाड़ी में छोटा बच्चा होता है, हम ऐसे वेव कर रहे होते हैं, हम ही बच्चा बिहेव करने लग जाते हैं. ये कैसे होता है? क्योंकि वो जो है वो सोल कॉन्शियस है, उसके ऊपर ईगो की लेयर्स धीरे 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 आएंगे. तो वो जो सोल कॉन्शियसनेस होती है वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी वो प्योरिटी क्रिएट कर देती है. हम बच्चे के साथ बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाता है, मैं ये, मैं ये, मैं ये, वो लेयर्स 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 आती है. अब राजयोग क्या करने वाला है कि जितनी लेयर्स ऊपर डाली हैं, अब क्या करना है, अब वो लेयर्स को क्या करना है, वो सारी लेयर. अब इसका मतलब ये नहीं हमारा रोल छूटेगा, पोजिशन नहीं, वो सब कुछ वहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ वो मेरी आइडेंटिटी नहीं होगा, वो मेरा रोल होगा, वो मैं नहीं होगा. मैं एक प्योर आत्मा प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉक्टर. इज दैट डिफरेंस फ्रॉम मैं डॉक्टर? कोई फर्क दिखाई देता है दोनों चीजों के अंदर? फर्क दिखाई देता है, धीरे धीरे और देगा, गहरा दिखाई देगा. तो राजयोग अर्थात ये सारे लेयर्स ऑफ मैं जो आया है इसको उतारना है, एंड मैं वो प्योर आत्मा उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है. और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल हमारी इनोसेंस एंड प्योरिटी हो जाएगी. और उसके लिए वो सिंपल एक्सरसाइज करनी है, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट मैं आत्मा हूं. मालूम है कि सारा दिन में याद नहीं रहता है, याद है आत्मा हो, नहीं याद रहता ना, सिर्फ जब कोई शरीर छोड़ता है तब हमें याद आता है कि आत्मा चली गई. आत्मा की स्मृति में शांति का पाठ करेंगे, या फिर जब भूत की पिक्चर देखते तो आत्मा याद आता है. बस दो ही टाइम आत्मा वर्ड याद आता है, बाकी सारा दिन में तो अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में हम चलते हैं. ईगो कॉन्शियस होते हैं तो मैं किसी से बड़ा या मैं किसी से नीचे होता हूं, और सोल कॉन्शियस होते हैं तो, सोल कॉन्शियस होते हैं तो, सोल कॉन्शियस होंगे तो, एक मिनट आंख बंद, अपने हॉस्पिटल चलते हैं, अपनी गाड़ी लीजिए और हॉस्पिटल पहुंचिए. जब आप हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं वो आपके लिए गेट खोलते हैं, फिर हॉस्पिटल के अंदर जाइए, फिर एक फ्रंट डेस्क पे एक बहन है, सबकी क्वेरीज हैंडल कर रही हैं, आप उनसे बात करते हैं। फिर चलते फिरते अनेक पेशेंट्स मिल जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं। फिर आप अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं, आपका इंटर्न है, आप उससे बात करते हैं। आगे अपने कमरे में जाइए, आपकी सिस्टर है, आप उससे बात करते हैं। फिर बीच में आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं। और फिर कुछ देर के बाद उस हॉस्पिटल के जो सीनियर मोस्ट है, ओनर है या चेयरपर्सन है, आप उनसे बात करते हैं। पांच लोगों से मिल लिए, क्या पांचों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा था? Would we the same with all five? Yes or no? No? Did we change five times? Yes? तो फिर अभी ढूंढना है उन फाइव में से मेरी ओरिजिनल नेचर कौन सी थी। गेट पे, फ्रंट डेस्क पे, इंटर्न के साथ, सिस्टर के साथ, पेशेंट के साथ, मेरी ओरिजिनल नेचर इनमें से कौन सी है? मेरी ओरिजिनल नेचर मतलब मैं, नेचुरल, कौन सा इन सब में से? चलिए बताएं कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5 में से मेरी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? क्या हम चेंज हुए थोड़ा 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 चेंज हुए? ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने का कारण क्या था? हम किससे मिल रहे थे? हम किससे मिल रहे थे? हम रोल से मिल रहे थे। तो किसी रोल में वो नीचे थे, हम ऊपर थे, और किसी रोल में हम नीचे थे, वो ऊपर थे, तो स्वभाव व्यवहार बदल जाता है। फिर से आंख बंद कीजिए, फिर से चलिए उसी जर्नी पर और उन्हीं पांच लोगों से मिलिए, लेकिन अब एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ। आई एम अ सोल मीटिंग अनदर सोल। गेट पे भी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा और मैं आत्मा तो इक्वल है। जो इंटर्न है वो भी अभी जस्ट पास होकर आए हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं आत्मा और वो आत्मा तो इक्वल हैं। जो वार्ड बॉय बाहर झाड़ू पोछा कर रहा है, मैं आत्मा और वो आत्मा तो बिल्कुल इक्वल है। एंड वो जो हॉस्पिटल के हेड टॉप फ्लोर पे बैठे हैं, वो आत्मा और मैं आत्मा तो बिल्कुल इक्वल है। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस कॉन्शियसनेस चेंज होने से? क्या कुछ चेंज आएगा थोड़ा सा? यस, आएगा नहीं आएगा? किस किस को लगता है थोड़ा सा चेंज आएगा? बाह्य रीति से सब सेम रहेगा। हाँ, बाह्य रीति से आप गाड़ी लेकर जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, आप अंदर जाएंगे, आप खड़े होके गेट नहीं खोलने वाले हैं। रोल फिर भी रोल रहेगा, एज फिर भी एज रहेगी, एक्सपीरियंस फिर भी एक्सपीरियंस रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, औधे में छोटा बड़ा औधे में होगा। औधे के लिए हम रिगार्ड देते हैं, लेकिन रिगार्ड बाह्य होता है। किसी के लिए हम खड़े होते हैं, कोई हमारे लिए खड़ा होता है, किसी के लिए हम दरवाजा खोलते हैं, कोई हमारे लिए दरवाजा खोलता है, कभी आप किसी के पैर छूते थे, आज कोई आपके पांव छू रहा है। ये सब बाह्य होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये वैसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं हम करने वाले हैं। लेकिन जस्ट हमारा एक दूसरे से मिलने का तरीका, ये जो चेंज है ये बाहर नहीं होने वाला। बाहर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जो अभी था, लेकिन अंदर की कॉन्शियसनेस में इतना सा भी नहीं आएगा कि मैं इनसे ऊपर हूं या मैं इनसे नीचे हूं। तो कौन सी वाइब्रेशन एक दूसरे को रेडिएट होगी? वो छोटे बच्चे वाली प्योरिटी है। आप एक बच्चे को ये 5 फ्लोर पर लेकर जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो किससे मिल रहा है, वो वैसा ही स्माइल करेगा सबके साथ, राइट? बस वैसा बनना है, वैसा बनना है कि मैं आत्मा एक आत्मा से मिल रहा हूं, रोल्स अलग अलग है, तो हमारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। सो इस लाइन को लिख लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर द सोल, रिगार्ड फॉर द रोल। रोल के लिए बिल्कुल रिगार्ड देना है, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल, रिस्पेक्ट हर आत्मा के लिए सेम। एक एक संकल्प में अंदर ना आए कि ये मेरे से नीचे या मैं इनसे नीचे, बिल्कुल वो कॉन्शियसनेस, मैं और आप बराबर, इक्वल, मैं और आप फैमिली। तो जब हम मैं ऊपर या नीचे करते हैं ना, तब ईगो वेक कर रहा है उसके अंदर, और जैसे ही दोनों में से एक जना भी उस प्योरिटी ऑफ इंटेंट और उस कॉन्शियसनेस से दूसरे को देखेगा, दूसरे की भी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। जब बच्चा आपको उस एनर्जी से देखता है, आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो प्योरिटी इन वन विल इमर्ज द प्योरिटी इन द अदर, ईगो इन वन विल इमर्ज द ईगो इन अदर। होता है ऐसे कि नहीं? क्योंकि वाइब्रेशन जा रही है ना उधर, वाइब्रेशन जा रही है। तो आज से सेकेंड होमवर्क, प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं, हर बार याद करना है, आई एम अ प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर ब्यूटिफुल सोल। औधे से नहीं बात करनी है, औधे अनुसार काम करना है, व्यवहार आत्मा के साथ करना है। जैसे ही ये सोलसनेस प्रैक्टिस होने लगी, आपकी राइट हैंड साइड की क्वालिटीज अपने आप इमर्ज होने लगेंगी। इन पे कोई मेहनत नहीं करनी है बिल्कुल, क्योंकि प्योरिटी इमर्ज हो जाएगी। जहां प्योरिटी आएगी, वहां पीस आएगी, वहां पावर आएगी, वहां लव आएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है? अब अगर मुझे याद रहा कि मैं आत्मा हूं, तो सामने वाला भी कौन है? आत्मा है। अब रिश्ता निभाना शुरू करते हैं, अब अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं एक दूसरे को। अब आपके घर में जो जो है फैमिली में, वो कौन है, वो कौन है? क्लोज योर आइज, उनको देखते हैं। हमारे घर में कौन है? हम कहते हैं बच्चा है। बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? वो बच्चा है या उसका शरीर बच्चे का है? फर्क पड़ गया? Can you see we have been operating through a completely different consciousness? Completely different consciousness. Age कितनी है आपकी? Sister, आपकी age कितनी है? हाँ, कितनी? 56. अब हर एक अपनी एज सुनाइए, अब हर एक अपनी एज सुनाइए, कितनी है? 47. और कुछ? 35. और ये फिगर किसकी एज है? वेरी गुड, देखा, चेंज हो गया ना। ये हमारी एज नहीं है, ये किसकी एज है? जैसे इस ड्रेस की एज है, वैसे इस शरीर की एक एज है। तो फिर आपकी एज कितनी है? You are eternal, ageless, timeless. सोल कॉन्शियसनेस में सबसे बड़ी चीज जो खत्म हो जाती है, वो होती है फियर ऑफ डेथ। और जिसके अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाए, उसको इस जीवन में किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि अपनी मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और किसी और की मृत्यु का भी डर खत्म हो जाता है। इसीलिए ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। जहां अटैचमेंट आएगी, वहां फियर ऑफ लूजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जहां वो अटैचमेंट टू अ रोल टू एन इमेज खत्म होने लगेगी, फियर ऑफ लूजिंग दैट अपने आप खत्म होने लगेगा। तो आपकी एज कितनी है? अब आप वापस जाएंगे, कोई पूछेगा आपकी एज कितनी है, ये नहीं बोलना मैं नहीं बताऊंगी मेरी एज कितनी है, ये सब हम नहीं करते, ये सब ईगो है। आपकी एज कितनी है? बोलो, आई एम टाइमलेस, आई एम इटर्नल, विच इज अ फैक्ट। अब समझ में आएगा रिश्ते कैसे निभाने हैं। अब जो आपके घर में 4 लोग हैं, अब उनको एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस से देखें। वो मेरा बच्चा, मेरा स्पाउस, वो तो रिश्ता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, लेकिन वो जो बच्चा है वो एक आत्मा है जो बच्चे का रोल प्ले कर रहा है। वो जो स्पाउस है वो सोल है जो स्पाउस का रोल प्ले कर रहे हैं। अब टू अंडरस्टैंड कि मैं आत्मा हूं, इटर्नल हूं, तो फिर डेथ का मीनिंग क्या है? डेथ का मीनिंग क्या है? क्यों आपने कहा बॉडी को बाहर लेकर जाएं? क्योंकि वो जो इटर्नल एनर्जी है वो क्या हो गई? वो निकल गई वहां से। अब क्योंकि वो एनर्जी है तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती है, तो एनर्जी एक शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर में घुस जाती है और वो गर्भ में शरीर बन रहा है, आत्मा आकर उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। सो बर्थ एंड डेथ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बर्थ एंड डेथ इज ओनली द सोल लीविंग वन कॉस्ट्यूम एंड द सोल टेकिंग वन कॉस्ट्यूम। एक पुराना ड्रेस छोड़ना है और नया ड्रेस पहनना है, लेकिन वो पुराना ड्रेस छोड़ने के बीच और नया ड्रेस पहनने के बीच क्या हम बदल जाएंगे? आज आपने एक ड्रेस पहना है, आप रात को इस ड्रेस को छोड़ेंगे, आप कल सुबह एक दूसरी ड्रेस पहनेंगे, आप यहां आएंगे, आप सबकी ड्रेस कल अलग होगी, राइट है? सब अलग ड्रेस पहन के आएंगे कल। आज इस ड्रेस में बैठे हैं, कल उस ड्रेस में होंगे, क्या आप भी बदल जाएंगे ड्रेस के साथ? आप सेम ही होंगे ना? तो जो आपकी आज नेचर है, जो आपके संस्कार है, वो कल भी आपके सेम होंगे, कि ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होगी कल। इसी तरह मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मेरी जो नेचर है, मेरे जो संस्कार है, स्वभाव है, वो मेरे हैं। जैसे ही मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं, नेक्स्ट शरीर लेती हूं, बेबी बॉर्न, वो ही संस्कार सेम जाएंगे वहां। अब अपने परिवार को देखना शुरू करें। They are a soul on a journey. किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों के संस्कार सारे हमारे जैसे हैं? वो हाथ उठाइए। और अगर आपके दो बच्चे हैं या उससे ज्यादा बच्चे, उनके एक दूसरे से भी अलग हैं। हैं अलग? किसके काफी अलग है? किसके घर में ऐसा है कि संस्कार काफी अलग है एक दूसरे से? उठा लो, देखे ना रिजल्ट क्या निकले, काफी अलग है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता? एक ही घर में रहते हैं, बचपन से एक ही पालना मिली, एक ही परवरिश मिली, सब कुछ एक ही मिला। एक पेरेंट दो बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा, फिर भी ये दो बच्चे एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? और कभी कभी तो बोलते हैं, ये मेरा बच्चा, ये कैसे हो सकता है ऐसा कि ये मेरा बच्चा है? मतलब कैसे? क्योंकि वो बच्चा और मैं बिल्कुल कैसे होते हैं? एकदम डिफरेंट। तो हमें लगा मेरा बच्चा, सो मेरा बच्चा जैसे ही कहा, वी थॉट दैट मेरा बच्चा हैज टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ मी। एक चीज याद करिएगा, आप सिर्फ उस आत्मा के कॉस्ट्यूम को क्रिएट करते हैं। जैसे दर्जी एक ड्रेस क्रिएट करता है ना, वैसे यू आर नॉट क्रिएटिंग द चाइल्ड, यू आर क्रिएटिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ दैट चाइल्ड। फर्क है दो बातों में? फर्क है दो बातों में? कितना फर्क है? बहुत फर्क है। आप उस बच्चे को नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप वो कॉस्ट्यूम क्रिएट कर रहे हो जिसमें वो आत्मा एंटर करने वाली है। सो यू क्रिएट ओनली द कॉस्ट्यूम, ओनली द कॉस्ट्यूम। अब वो आत्मा जो एंटर होने वाली है, वो तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? वो अपने साथ बहुत सारे बंडल ऑफ संस्कार लेकर आने वाली है। लेकिन हम उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम एक दूसरे को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम उसको आत्मा ऑन अ जर्नी विद संस्कार देखते ही नहीं हैं। हम कहते हैं मेरी नर्स होकर ऐसे है, वो नर्स सिर्फ एक रोल है। अगर आपके डिपार्टमेंट में 10 नर्स हैं, वो सारी डिफरेंट होने वाली हैं। ट्रेनिंग सबकी एक जैसी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। ये सब एक जैसे परफेक्ट क्यों नहीं हो सकते? अगर ये सब एक जैसे परफेक्ट हो जाएं तो रिश्ते तो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो एवरी सोल इज डिफरेंट ऑन दैट जर्नी। अब अगर आप टाइमलेस हैं, इटर्नल हैं, आप इस कॉस्ट्यूम में 56 इयर्स से हैं, ठीक है, ओके, इससे पहले कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में. लेट्स से आप 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में थे. उससे पहले आप कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में. उससे पहले आप कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में. उससे पहले आप कहाँ थे? एक और कॉस्ट्यूम में. 1000 इयर्स की जर्नी है या उससे भी ज्यादा. एक जीवन काल में भी आपकी और मेरी परिस्थितियां लाइफ की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. राइट और रॉन्ग? यस, यस और नो? अगर एक लाइफ टाइम में दो लोगों की सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं, तो 20 लाइफ टाइम्स में दो लोगों की सिचुएशंस कितनी अलग होंगी? कितनी अलग होंगी? होंगे या नहीं होंगे? हम एक लाइफ टाइम में भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, बट एक्चुअली हम जिसके साथ डील कर रहे हैं, हम दोनों तो 100 लाइफ टाइम से, 20 लाइफ टाइम से हम एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल. अब क्या आपको पता है कि जो आपके घर में रह रहे हैं वो अपनी लाइफ टाइम्स के अंदर क्या कुछ देख कर आए हैं, क्या कुछ क्रॉस करके आए हैं? अब अगर आप उनको उस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो कंपैशन अपने आप नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा. अगर आप उनको उस नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पर शिफ्ट होना ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर हम देखेंगे ये मेरा बच्चा है और ऐसा होना चाहिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बढ़ती जाएगी. एक जीवन काल में इतना कुछ हो रहा है. इस समय भारत में कितनी जगह पानी 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 है. कितनी आत्माओं ने इस पानी की वजह से शरीर छोड़ा है पिछले कुछ महीनों में. राइट है? सिर्फ लास्ट सीन भी अगर हम देख लें आत्मा का शरीर छोड़ने का, बाढ़ आती है. सब आराम से बैठे हुए थे, सडनली पानी आया. वो उत्तराखंड में सडनली आया इस तरह से. ऐसे होटल में बैठा है, कोई घर में बैठा है, सडनली गश ऑफ वाटर. कुछ सेकेंड्स में सब कुछ चेंज हो जाता है. अगर हम उस सोल का, उस कॉस्ट्यूम का लास्ट सीन भी सिर्फ देख लें, हर क्षण एक सीन है, लेकिन लास्ट सीन भी अगर हम देख लें जो रिकॉर्ड हो गया, तो क्या रिकॉर्ड हुआ उस आत्मा के ऊपर? क्या रिकॉर्ड हुआ उस आत्मा के ऊपर? फियर ऑफ वॉटर तो एक चीज है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, इनसिक्योरिटी नेचुरल हो जाएगा उस सोल के लिए. यस yes, आप अग्री करेंगे ये नेचुरल हो जाएगा उस सोल के लिए. कौन कौन अग्री करता है? ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल है. लेकिन जब वो आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे गर्भ के में प्रवेश करके बच्चा पैदा होता है, वो पेरेंट को तो पता नहीं है कि वो आत्मा क्या देख कर आई है. वो पेरेंट को तो लगता है बच्चा आया है, मतलब परफेक्ट सोल. और फिर 3-4 साल की एज में उस बच्चे को दिखाई देता है कि डर बहुत लगता है, सबको दिखता है. उसको रात को अकेले रहने में डर लगता है, उसको बाहर जाने में डर लगता है, पानी के तो नजदीक वो जाता ही नहीं है. और अपने पेरेंट्स को वैसे क्लिंग करके रखता है. अब अगर हम कहेंगे ये मेरा बच्चा है, तो इतना डरपोक कैसे है? तो फिर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन से वरी, वरी से फियर, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म, फिर उसके बाद कंपैरिजन विद अदर बच्चा, कंपैरिजन टू सिबलिंग. ये देखो ये कितना स्ट्रांग है, तुम कितने डरपोक हो. हो जाएगा ये नॉर्मल या नहीं होगा? होगा. हाथ उठाओ किस किस को लग रहा है ये नॉर्मल होगा. और जैसे ये होगा वो रिश्ता क्या होने लगेगा? वो रिश्ता क्या होने लगेगा? उसमें ये सारी एनर्जीज आ जाएंगी जो लेफ्ट हैंड वाली है. अब फियर ऑफ वाटर तो इजी चीज है अंडरस्टैंड करने की, लेकिन एक लाइफ टाइम में हर आत्मा पता नहीं क्या 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 सीन्स देखती है, जिसकी वजह से उसके यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड होता जा रहा है. इसलिए आज से हमारा थर्ड होमवर्क, सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है. हमारी हर थॉट, हमारा हर वर्ड, हमारा हर बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है आत्मा के ऊपर. ये सिर्फ इस लाइफ टाइम में काम नहीं करेगा, ये रिकॉर्डिंग हमारे साथ जाएगी. इसीलिए सब कुछ परफेक्ट करते हुए सबसे ज्यादा अटेंशन क्या रखना चाहिए? कहाँ परफेक्ट होना है? कहाँ परफेक्ट होना है? रखे उंगली कहाँ परफेक्ट होना है? यहाँ. और सारा दिन हम कहाँ परफेक्ट होते हैं? सिर्फ यहाँ.
और जहां हम इतनी मेहनत करते हैं परफेक्ट होने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां हम इतनी मेहनत करते हैं परफेक्ट होने की, वो तो खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। और जहां हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे परफेक्ट होने का, इसको हम मिटा नहीं सकते कभी भी। आज से रख लेंगे ध्यान, किधर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है। अभी कोई अगर आपकी फोटो खींचे तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? अभी तो आया भी नहीं तो भी हम ठीक हो गए, अभी तो फोटो खींचने भी नहीं को यार। जस्ट इट इज ह्यूमन नेचर कि अगर कोई कैप्चर कर रहा है हमारे को, तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। अपने कपड़े ठीक करेंगे, बाल ठीक करेंगे, अपनी स्माइल अच्छी करेंगे, सब करेंगे। आखिर फोटो खींच रहे हैं, सारा दिन फोटो खींच लिया, हर क्षण फोटो खींच लिया, हर थॉट खींच रहा है। इट इज गेटिंग कैप्चर्ड 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 एंड रिकॉर्डेड। और ये संस्कार और ये कर्म हमारे परमानेंट है, इसको अब हम नहीं चेंज कर सकेंगे अनलेस हम उस पर रिकॉर्डिंग चेंज करना शुरू करें। तो थर्ड पर्पस ऑफ लाइफ हो गया, क्या ध्यान रखना है सारा दिन, क्या ध्यान रखना है सारा दिन। अब सुबह जो हम देख रहे थे उन्होंने गलती की तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, तो गलती की किस पे रिकॉर्ड हुआ? गलती उन्होंने की वो किस पे रिकॉर्ड हुआ? ये करते जाओ इक्वेशन, गलती उन्होंने की किस पे रिकॉर्ड हुआ? उन पे रिकॉर्ड हुआ। गुस्सा मैंने क्रिएट किया किस पे रिकॉर्ड हुआ? मुझ पर रिकॉर्ड हुआ। आज एक लाइन लिख लें, दूसरों की स्टोरी की वजह से अपनी स्टोरी बिगाड़नी नहीं है, वो उनकी स्टोरी है, वो उनकी स्टोरी है। उनको गाइड कर सकते हैं, उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्टोरी नहीं बिगाड़ देना किसी और की कहानी के लिए। वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमें किसकी स्क्रिप्ट ध्यान से लिखनी है, हमें किसकी स्क्रिप्ट ध्यान से लिखनी है? हमें अपनी लिखनी है। अगर वो अपनी स्क्रिप्ट लिखने में कोई गलती कर रहे हैं, उनकी गलती को देखते हुए अपनी स्क्रिप्ट में गलती नहीं कर देनी है। दिख रही हैं सबकी कहानियां, दिख रही हैं कहानियां? अब आप देखो, हर सोल को देखोगे ना, हर एक अलग अलग स्टोरी दिखाई देगी हर एक की। तो हर घर में चार लोग हैं तो चार स्टोरीज हैं, ये अलग अलग स्टोरी यहां रिकॉर्ड हो रही है। और जो वो आत्मा है वो अपनी स्टोरी के थ्रू ही इनैक्ट करती है। तो किसी के अंदर इनसिक्योरिटी का संस्कार है, किसी के अंदर कंट्रोलिंग का संस्कार है, किसी के अंदर डोमिनेशन का संस्कार है, किसी के अंदर फियर का संस्कार है। ये स्टोरी वो आत्मा लिखकर लेकर आई है। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि उनकी स्टोरी को देखकर अपनी स्टोरी बिगाड़नी नहीं है, लेकिन अपनी स्टोरी को ठीक रखते हुए उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखाने के तरीका हम सिखा सकते हैं। दैट इज फैमिली। तो इसीलिए जो हमने आज सुबह देखा, इमोशनल डिपेंडेंस में क्या होगा, उनकी स्टोरी को देखते हुए हम क्या कर देंगे? इमोशनल डिपेंडेंस में क्या होता है? उनकी स्टोरी को देखते हुए हम क्या कर देते हैं? हम अपनी स्टोरी बिगाड़ देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? इमोशनल इंडिपेंडेंस। उन्होंने जो किया वो उनका व्यवहार, मुझे पहले किस पर अटेंशन रखना है? अपनी स्थिति। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप कि मुझे किस पर अटेंशन रखना है? अपनी स्थिति को परफेक्ट रखना है। प्रायोरिटी इन लाइफ, आई एम परफेक्ट हियर। रोल परफेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्ट, रिश्ता परफेक्ट, अपने आप होगा बाद में। पहले कहा आई एम परफेक्ट हियर। हम में से किस किस के अंदर परफेक्शन का संस्कार है? काम परफेक्ट होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन या हर एक के पास होता है। अब एक और उसमें ऐड करना है, कहां परफेक्शन होना चाहिए, कहां परफेक्शन? आई एम परफेक्ट। तो जब फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब उनको देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी गलतियों को देखते हुए, उनके गलत से गलत, बुरे से बुरे कर्म को देखते हुए भी, यहां कुछ भी लेफ्ट हैंड का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हो सकता है? हो सकता हो सकता हो सकता दो चीजें हैं, आप देखें क्या होगा। दोनों हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखिए, राइट हैंड पे अपने को रखिए। अभी आपके बच्चे की लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, या तो वो कोई गलती कर रहा है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत मीन्स कोई फेलियर हो गया, कोई रिजेक्शन हो गया, कहीं अटक गया, आगे मूव नहीं कर पा जाते हैं आजकल। लेफ्ट हैंड पर वो किसकी जर्नी है? वो उस सोल की जर्नी है। ये किसकी जर्नी है? ये मुझ आत्मा की जर्नी है। बट क्योंकि मैं आत्मा पेरेंट का रोल प्ले कर रही हूं, तो पेरेंट का रोल इस बच्चे के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे आप डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो डिजीज्ड आपके पास आएगा, आपको उसको हील करना है। ये है डॉक्टर का रोल। पेरेंट का रोल क्या है? पेरेंट का रोल क्या है? वो पेन में है बच्चा, और पेन सिर्फ ऐसा नहीं होता उदास, चीख रहा चिल्ला रहा है वो भी पेन होता है। कोई गलत कर्म कर रहा है वो भी पेन होता है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल इनर्शियल नेचर से क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है। पेरेंट का रोल क्या होता है? पेरेंट का रोल क्या है? गाइडेंस तो हम बहुत देते हैं, वो सुन ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे? सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे करते हैं? इसको पकड़ो, दोनों हाथ रखो, देखते हैं क्या करना है। अपने बच्चे को रखना। अब वो बच्चा किसी ना किसी रीजन से, चाहे अपनी गलती से या उसके भाग्य में कुछ ऐसा सीन आया है, उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेडली कुछ गलत होता जा रहा है, तो वाइब्रेशनली वो सोल कहां मूव कर जाएगी? डाउन करेंगे जी, थोड़ा लेफ्ट हैंड को मूव डाउन करेंगे। वाइब्रेशनली वो मूव डाउन कर जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशनली पेन में है। अब क्योंकि मैं आत्मा, उस आत्मा से अटैच्ड हूं, क्योंकि हमने कहा बच्चा है, अटैचमेंट तो होगी ही। अब तो क्योंकि हम अटैच्ड हैं और वो आत्मा वाइब्रेशनली डाउन जाती है, तो हम भी कहां चले जाते हैं? किस किस ने एक्सपीरियंस किया हम उनके साथ डाउन गए? हाँ ठीक है, अब इसको पकड़े। अटैच्ड हैं तो डाउन के साथ तो डाउन ही जाएंगे, नेचुरल है। अब डाउन के साथ डाउन गए तो फिर मुझ आत्मा से इस आत्मा को कौन सी वाइब्रेशन मिल रहे हैं? पेन के। पर वो तो पहले से ही पेन में थे, और हमारा पेन कैसा है? उनके लिए चिंता, उनके लिए डर, उनको देख देख के परेशान, उनके भविष्य के लिए इनसिक्योरिटी। एंड हम कहेंगे ऐसा सोचना तो फिर इन द ब्लैंक, ऐसा सोचना तो नॉर्मल है। वेरी गुड। तो हमारा नॉर्मल दूसरे सोल की जर्नी को कहां लेकर जा रहा है? डाउन। एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या था? दूसरे सोल की जर्नी को कहां लेकर जाना था? अप। हम कहां लेकर जा रहे हैं? डाउन। इट इज लाइक एज अ डॉक्टर हमारा रोल था इलाज करना, हम इलाज तो किया नहीं, क्या कर दिया? अच्छे से बोल दो, रिकॉर्ड हो जाएगा अच्छे से। फिर अच्छे से बोलेंगे तो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा तो चेंज कर लेंगे। हमने उनका इलाज तो किया नहीं, हमने क्या कर दिया? हमने उनके दर्द को और बढ़ा दिया, सिर्फ एक ही कारण की वजह से। अब इसको क्या करना है? ये राजयोग ये करता है, फिर लोगों को बड़ा डर लगता है, हम डिटैच हो जाएंगे उनसे। हमने कहा हाँ आप डिटैच हो जाएंगे। डिटैचमेंट मतलब उनका पेन उनका, मेरे पास चॉइस है। और जैसे ही मेरे पास चॉइस आती है तो हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? क्योंकि अगर उनको आपको शक्ति देनी है तो पहले आपको उनके दर्द से क्या होना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा। अगर आपके पेशेंट को बीमारी है और आपको भी वही बीमारी है, तो कोविड में क्यों वो पीपी किट पहना? जाना चाहिए था ना ऐसे, ठीक है आपका कोविड मेरा, और फिर मेरे से वो औरों का। That is attachment. No, your pain is my pain, and then from my pain it is somebody else's pain, and very soon we are all in pain. That is attachment. And detachment means your pain is my, your pain. And my role is going to be to give you power to heal your pain. कौन सा वाला बनना है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? अटैचमेंट दर्द लाता है, अटैचमेंट शक्ति को कम करता है, अटैचमेंट दूसरे की भी शक्ति को कम करता है, और डिटैचमेंट सिर्फ मतलब है कि मेरे मन की स्थिति और आपके मन की स्थिति अलग है, मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन डिटैचमेंट अपने आप नहीं हो सकता है, आप सोचे आज मैं डिटैच हो जाऊं, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करके अपनी पावर बढ़ाना शुरू करते हैं, डिटैचमेंट अपने आप हो जाती है, क्योंकि आप इमोशनल डिपेंडेंसी से शिफ्ट होकर इमोशनल इंडिपेंडेंस पे आ रहे हैं। आपको कहां होना चाहिए अभी, कार्मिकली क्या राइट है एक पेरेंट के लिए, कहां होना चाहिए, कितना ऊपर? आपका बच्चा इतने दर्द में, आपको कहां होना चाहिए, बनना है आपको ऐसा? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? तो इसीलिए कभी भी आकर अपने बच्चों के बारे में बात नहीं करना। आज हम दोपहर को बच्चों के बारे में बात करते हैं, नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या करना है, कुछ नहीं करना उनके साथ। हम अपने बच्चों को कैसे चेंज करें, बिल्कुल नहीं चेंज करना है उनको, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते उनको। आप जाके किसी और आत्मा को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको शक्ति दे सकते हैं जिससे वो खुद शक्तिशाली बनकर खुद को चेंज करेंगे। लेकिन ये डन है कि कोई भी सोल जब अपने ऊपर वर्क करके अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाती है, तो उसके एनर्जी सर्कल में जितनी सोल्स और कनेक्टेड होती हैं, उनको वो पावर मिलनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जब आप ऐसे जाना शुरू करेंगे, सिर्फ आपकी फैमिली को पावर नहीं मिलने वाली है, आप ऑफिस जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपके वहां लोगों को सारी पावर मिलने वाली है, आप हर एक पेशेंट से जिसको मिलेंगे आपसे उनको पावर मिलने वाली है। तो एक सोल अपने आप को एनर्जाइज करेगी तो कितने सोल्स का बेनिफिट होगा? एक आप अपने आप को एनर्जाइज करेंगे तो कितने लोगों का बेनिफिट होगा? तो फिर करना चाहिए, उतना टाइम थोड़ा सा रोज निकालना चाहिए, निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, राइट? अब आज से कुछ वोकैबुलरी चेंज करेंगे रिश्तों में। एक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। अब आई कैन अंडरस्टैंड यू, व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ आ गया है कि इस लंबी यात्रा पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू रिजेक्शन होता है, I understand you respect और acceptance होता है। मन में भी नहीं सोचना मुझे समझ नहीं आता ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, नहीं समझ में आएगा, सोचना भी नहीं, कोशिश भी नहीं करना दूसरे को समझने की, क्योंकि आपने दूसरे की जर्नी नहीं जी है, तो आपको दूसरे का संस्कार नहीं समझ में आ सकता, दूसरे को भी आपका संस्कार समझ में नहीं आ सकता। हर एक की जर्नी क्या थी, अलग थी। तो आई अंडरस्टैंड यू ओनली मीन्स कि आई अंडरस्टैंड कि इस जर्नी पर कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है। ठीक है, चेंज कर ले लाइन, क्या लाइन कन्वर्ट हो गई अभी, आई अंडरस्टैंड यू। दूसरी लाइन, आई एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट यू मतलब आज से आपके उस संस्कार, आपके उस व्यवहार, आपके उस कर्म को देखकर अंदर ये गलत है ये थॉट खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे हम किसी के लिए सोचते हैं ये गलत है, वो उस आत्मा को कहां लेकर जाएगा? इस डायनेमिक्स पे करते रहना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, उसको नीचे लेकर जाएगा, रिजेक्शन, यू आर रॉन्ग, हाउ कैन यू बी लाइक दिस, उनको कहां लेकर जाएगा, नीचे लेकर जाएगा। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हम दूसरे को नीचे लेकर जाएं, क्योंकि जो दूसरे को नीचे लेकर जाएगा वो खुद अपने कर्मों में भी नीचे जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड यू, दूसरा आई एक्सेप्ट यू। आई एक्सेप्ट यू डजंट मीन आप वैसा ही रहें, I accept you just means कि मैं आपके इस संस्कार या व्यवहार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने वाली हूं कि आप ऐसे क्यों हैं, नहीं। ठीक है, पहला वाला क्या था, I understand you, दूसरा वाला क्या है, I accept you, तीसरा वाला है, I heal you। जैसे आप शरीर को हील करते हैं, अब सोल कॉन्शियसनेस से हम आत्मा को भी हील करेंगे। अगर हम शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो हम आत्मा की कमजोरियों को कौन ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन सा ज्यादा आसान है? शरीर की बीमारियों को ठीक करना ज्यादा आसान है या आत्मा की कमजोरी को ठीक करना ज्यादा आसान है? कौन सा आसान है? शरीर की बीमारी को ठीक करना ज्यादा आसान है या आत्मा की कमजोरी को ठीक करना ज्यादा आसान है? आत्मा की कमजोरी कौन कौन अग्री करता है? आत्मा की कमजोरी, वो आप तो सुबह और अभी के सेशन में चेंज हो गए। सुबह आप कह रहे थे डॉक्टर बनना ज्यादा आसान है, शांत रहना मुश्किल है। देखा कितना असर होता है वायुमंडल का। एनीथिंग दैट इज इंटरनल इज ईजी, एनीथिंग दैट्स वाइब्रेशनल इज ईजी, बिकॉज उसमें तो सिर्फ थॉट्स पर वर्क करना है। शरीर को आप कितना भी कोशिश करें, बट बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन थॉट्स तो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में? सिर्फ हम। अब आप बताइए, ये बच्चा दर्द में है, आपने उसको हील करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, उनको दर्द में और लेके जाने के लिए हम कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल दीजिए। वो दर्द में है, हम ऐसी कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे थे जिससे उनका पेन बढ़ जाता? थॉट बोलना स्पेसिफिक, अभी थॉट्स को निकालते हैं। कौन सी थॉट हम बोलते हैं जिससे सोचते हैं जिससे उनका दर्द बढ़ता है? स्पेसिफिक थॉट, संस्कार नहीं, थॉट। क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा इसका? ऐसे कैसे होगा इसका? आगे कैसे चलेगा? इतना करके भी ऐसा हुआ, पता नहीं क्या होगा। लंबी लिस्ट, ये लिस्ट क्या कर रही थी उस सोल को? नीचे लेके जा रही थी। ये लिस्ट मुझ आत्मा को क्या कर रही थी? जब हम नीचे जाएंगे तभी हमारी तरफ से पेन उधर मिलेगा। अब थोड़ा पकड़ के रखें, हमें यहां नहीं जाना है। कहां जाना है? उनको नहीं पहले ऊपर लेकर जाना है, पहले किसको ऊपर लेकर जाना है? उधर एडवाइस देने जाते हैं तो दोनों नीचे आते हैं। कभी एडवाइस देनी है, लेकिन कभी कभी यहां से बोली हुई चीजें काम नहीं करेंगे। कोई दर्द में है, आप उसको जाके बोलो चिंता मत करो, बोलेगा प्लीज बाहर जाओ, आप मेरे को छोड़ दो, है ना? होगा ऐसे कि नहीं होगा? क्योंकि ये एडवाइस कोई, कुछ लॉजिक नहीं बन रही है इसकी। कोई दर्द में है, हम उसको बोलते तुम चिंता नहीं करो, बोलने से नहीं होने वाला है ये। और इसलिए अगर आप देखें, जब लोग दर्द में होते हैं वो दूसरों से दूर रहना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे उनके दर्द को समझ नहीं सकते हैं, और उनको दर्द में देखकर खुद दर्द क्रिएट करते हैं, और वो दर्द उनके दर्द को क्या करता है? और बढ़ा देता है। कौन सी थॉट क्रिएट करेंगे जिससे हम ऊपर जाएंगे? अभी उनके बारे में नहीं सोचना है, अपने को पहले ऊपर लेकर जाना है। आप ऊपर जाएंगे वो अपने आप ऊपर जाएंगे, आप नीचे जाएंगे वो अपने आप नीचे जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशनली हम उस रिश्ते में कनेक्टेड हैं। कौन सी थॉट क्रिएट करेंगे अपने बच्चे के बारे में ताकि आप ऊपर जाएंगे? आज आप इस होमवर्क को करिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हमें यहां से जाने से पहले करना है। बहुत साक्षी होकर अपनी थॉट्स को देखिएगा और उनको लिख दीजिएगा। 3-4 प्रिडोमिनेंट थॉट होती है जो बहुत बार ऐसे रिपीटेडली प्ले होती रहती है। लगता है कि बहुत सारी थॉट्स है, बट एक्चुअली वो बहुत सारी कुछ होती नहीं है। वो 3-4 बेसिक होते हैं, उसी के अलग अलग वर्जन अंदर माइंड में चलते रहते हैं। उसको लिखिएगा और फिर वो उसकी एनर्जी तो आपको दिख ही जाएगी। अब आप चाहते क्या है उस बच्चे के साथ, क्या होना चाहिए, वो अगली लाइन में लिखिएगा। अभी जो हो रहा है उसको रिपीट करते रहेंगे तो कहां जाएंगे? इस बार भी ठीक नहीं हुआ एग्जाम, इस बार भी ठीक नहीं हुआ, अब ऐसे ही होता रहेगा तो आगे कैसे चलेगा? पर ये जो हो रहा है उसको ही रिपीट करते रहेंगे, और जिस स्थिति में वो है उस स्थिति को रिपीट करते रहेंगे माइंड में, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। क्योंकि जब आप उसी को रिपीट करते हैं तब आप उसके दर्द को कंज्यूम कर लेते हैं। हमें उसके पेन को कंज्यूम नहीं करना, हमें उसको पावर देना है। अब हमें वो वाली थॉट क्रिएट करनी है जो हम चाहते हैं कि हो, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हो वो वाली थॉट क्रिएट करनी है और वो कैबलरी ये लिखनी है कि वो हो चुका है। इसको कहेंगे संकल्प से सिद्धि। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो ऑपोजिट, सिर्फ अच्छा चाहिए आपको अपने बच्चे के साथ, जो बहुत अच्छा चाहिए, और कितना अच्छा चाहिए, इतनी पावर है क्योंकि आपका संकल्प उस बच्चे के लिए वरदान बनता है, आपका संकल्प उस बच्चे के लिए ब्लेसिंग बनता है। तो ब्लेसिंग तो हाईएस्ट दे सकते हैं, क्या होगा, क्या होगा इसका क्या होगा, कन्वर्ट कीजिए इनटू अ ब्लेसिंग, कन्वर्ट द वरी इनटू केयर, कन्वर्ट द पेन इनटू पावर। क्या थॉट क्रिएट करेंगे, आगे अच्छा होगा, हाँ अच्छे से अच्छे से लिखे लिखे, वोकैबुलरी है, हम सब वोकैबुलरी सीखने आए हैं यहाँ, क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बट अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, अभी क्या करें। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बाहर अच्छा होगा वो सेकेंडरी है, पहले हमें चाहिए कि वो आत्मा शक्तिशाली होने चाहिए, तो इसलिए हम कहेंगे ये पावरफुल सोल है, इंजेक्ट पावर इनटू दैट सोल। अच्छा तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले ये देखना है कि आत्मा कैसी चाहिए, आत्मा दर्द में है अभी, तो उसका नाम लेते हुए आप कहो यू आर अ पावरफुल सोल। उनको नहीं बोलना जाके, वो नहीं अभी सुनने वाले कुछ भी, ये चीजें बोलने के लिए नहीं होती है, कहां से बोलना है, ये यहां से बोलना है, यहां से बोलना है, यू आर अ पावरफुल सोल, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, इस समय वो आत्मा क्रिएट कर रही है थॉट, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, एंड आप यहां से भेजने वाले हैं यू आर अ पावरफुल सोल, आप शक्तिशाली आत्मा हो। अब एक बार बोलने से नहीं हो जाएगा, ये चिंता कितनी बार क्रिएट करते हैं, चिंता के थॉट्स कितनी बार क्रिएट करते हैं, हाँ चलती रहती है ना, चलती रहती है, चलती रहती है, जितनी देर वो चलती रहती है उसका गाना आपको चेंज करना और आपको बोलना यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, वो उदास होगा आपने कहना यू आर अ हैप्पी सोल, आपको उसकी शक्ति को पहले बढ़ाना है, काम तो होते रहेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर का काम परफेक्ट हो जाए, ठीक है ये बात, ठीक है ये बात, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, बन भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका बच्चा पावरफुल हो जाए, ये हमेशा हो सकता है, और अगर वो पावरफुल होगा तो वो जो बनेगा वहां मिरेकल क्रिएट कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो अटैचमेंट टू व्हाट दे शुड बिकम, ये भी उनको डिप्लीट करता है। इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, एक संकल्प रखना कि ये बनना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन एट द सेम टाइम एक सेकंड में डिटैच होने की भी पावर होनी चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरी चीज भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पेरेंट ही निराश हो गया, अगर पेरेंट ही हताश हो गया, तो फिर बच्चे का ऊपर उठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। फिर इस साल देखा ना कितने बच्चे चिट्ठी लिखकर चले गए अपने पेरेंट्स के लिए, क्यों चले गए ऐसा, क्योंकि पेरेंट का अटैचमेंट टू व्हाट द चाइल्ड शुड बी बहुत स्ट्रांग होता है, और वो बच्चा जो वो चीज को नहीं कर पाता है, नॉट दैट द चाइल्ड वॉज, बट द चाइल्ड कैन नॉट सी देयर पेरेंट गोइंग थ्रू पेन, एंड जब आप दर्द में होते हैं आपको सब कुछ दर्द ही दिखाई देने लगता है उस समय पर। तो इसलिए समय के साथ थोड़ा सा सोचने का तरीके को भी चेंज करना है, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत 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 मेहनत करनी है, बहुत अच्छा काम करना है, लेकिन एक सेकंड में डिटैच होना चाहिए, अगर वो बच्चा वो नहीं कर पाता तो इट्स ओके, परफेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक सेकंड में होना चाहिए, और बाहर शब्दों से नहीं, कहां से होना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट 30 साल से इसी बात से अटैच्ड है, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और अगर उस दिन वो नहीं हुआ बच्चे के पेन से ज्यादा, बच्चे के पेन से ज्यादा किसका पेन है? तो अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज. इंपॉर्टेंट हमेशा ये रखना है कि बच्चा पावरफुल हो, फिर वो जो करेगा उसमें मिरेकल क्रिएट करेगा. राइट है बात या नहीं है? यस और नो? अच्छे से बोलेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा. यस, हैप्पी होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए. पावरफुल सोल जो करेगी मिरेकल क्रिएट करेगी. तो लक्ष्य रखना अच्छा है, उसकी तरफ मूव करना अच्छा है, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए टेंशन क्रिएट करना, चिंता क्रिएट करना, वरी क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना, उस सोल को जर्नी पर क्या कर रहा है? डिप्लीट कर रहा है. वो उस आत्मा का सिर्फ रोल है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल को स्ट्रेंथन करने की है. ठीक है, आज से पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लीजिए. मुझ पेरेंट की एज अ रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मुझ डॉक्टर की एज अ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आप कैसे धीरे 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 किसी बिल्कुल बीमार को कैसे स्वस्थ कर देते हैं? कोई जो बेड रिडन होता है वो एक दिन भागने लगता है, कैसे करते हैं उसको? धीरे 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 धीरे. कितनी स्ट्रेंथ उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है बॉडी में और वो भागने लग जाता है. एक कंप्लीट हीलिंग ऑफ बॉडी हम कर सकते हैं. तो जो हम हीलिंग ऑफ बॉडी करते हैं, रिश्तों में हमें हीलिंग ऑफ सोल करना है. दैट इज रिलेशनशिप्स. कोई भी रिलेशन, नॉट जस्ट पेरेंट एंड चाइल्ड, एनीबडी, नॉट जस्ट पेरेंट एंड चाइल्ड, एनी सोल. हर सोल जो हमारे साथ रिश्तों में है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपकी नर्स है, चाहे आपका सीनियर है, एवरी वन इज अ सोल ऑन अ जर्नी. और हर एक अपने संस्कारों से चल रहा है. कोई आपसे इनसिक्योर हो सकता है, कोई आपसे जेलस हो सकता है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है, कोई आपकी निंदा कर सकता है, कोई आपके काम में बाधा डाल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन जो ऐसा कर रहा है, रखे हाथ, अब उनको रख लें लेफ्ट हैंड पे, अब बच्चे को नहीं रखना है, अब कोई ऐसे वाले को रखना है. जो ऐसा कर रहा है वो कहाँ है? लेफ्ट हैंड किधर है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इजी हो गया ना, ये ऐसे करना है. अब ऐसे करने के लिए वो जो कर रहे हैं उसका चिंतन नहीं करना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. जैसे आपने उसने जो किया उसका सोचेंगे तो आप इधर आ जाएंगे. उस आत्मा ने, लिफ्ट में 10 फ्लोर्स हैं, उस आत्मा ने 0 का बटन दबा दिया, वो गए किधर? अगर आपने सिर्फ इतना भी थॉट क्रिएट किया उसने 0 का बटन क्यों दबाया, तो आपका भी 0 का बटन दब जाएगा. डोंट गो एट द सेम वाइब्रेशन एज द अदर सोल. तो जब हम ये चिंतन करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम उन्होंने जो किया का चिंतन करके हम उनकी वाइब्रेशन के पास आ जाते हैं. याद रखना, वो किसकी स्टोरी है? वो किसकी स्टोरी है? बोलिए बोलिए, आप अपने मन में उनका नाम ले लीजिए. वो किसकी स्टोरी है? वो उनकी स्टोरी है. मेरी स्टोरी उनकी स्टोरी से अलग है. ये रिश्ता है. पहले तो रिश्ते में अपनी स्टोरी को उनकी स्टोरी से क्या करें? अलग करें. और फिर मेरी स्टोरी क्या है कि मुझे अपने आप को ऊपर लेकर जाकर मुझे बस उतना करना है, बाकी उन तक तो वो पहुंचता ही जाएगा. वो हमें करना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप होता है. जितना जितना ये कलयुग और अधिक हो जाएगा, आपके आसपास के लोग किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं? क्या आपको दिख रहा है लोग वाइब्रेशनली थोड़ा नीचे मूव कर रहे हैं? किस किस को दिख रहा है कि लोग वाइब्रेशनली नीचे मूव कर रहे हैं? क्योंकि एज अ डॉक्टर आपका सारा दिन लोगों से मिलना है, तो आप सिर्फ लोगों के शरीर को नहीं ठीक कर रहे, आप लोगों के मन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. क्या आपको लोगों की मनोस्थिति में फर्क दिखाई देता है 30 इयर्स पहले और अब में, 20 इयर्स पहले और अब में, 10 इयर्स और अब में, कोविड और कोविड के बाद? किस किस को कोविड और कोविड के बाद का फर्क दिखाई दे रहा है? क्या हमने सोचा था कि एक वायरस आएगा लोगों को ही बदल के चला जाएगा? हमने सोचा है कोविड आया ठीक हो जाएगा, खत्म, दुनिया बैक टू नॉर्मल. दुनिया बैक टू नॉर्मल नहीं आई. लोगों के मन की स्थिति बैक टू नॉर्मल नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि 2 साल में सबने मिलकर बहुत डर, दर्द और चिंता क्रिएट कर दी. वायुमंडल ही दूषित हो गया. तो जैसे इस वायुमंडल में आने से ही आपको शांति महसूस हो रही है, ऐसे हमने सृष्टि के वायुमंडल में फियर, एंजाइटी, पेन क्रिएट कर दिया 2 ईयर्स. तो लोग उस वायुमंडल में रह रहे हैं, अपने आप को ऊपर लेके जाने का कुछ नहीं कर रहे. तो वायुमंडल की वजह से कहां जाने वाले हैं? नीचे. सो राइट नाउ वी नीड नो प्रॉब्लम इन आवर लाइफ टू गो डाउन, जस्ट द एनवायरमेंट इज इनफ टू पुल अस डाउन. आने वाले समय में ये कहां जाएंगे? और अगर आप देखो, कोविड के बाद सिचुएशंस भी बंद नहीं हुई हैं. कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ. क्योंकि जितना वायुमंडल डाउन जाएगा, मन की स्थिति डाउन जाएगी. लॉ क्या था? लॉ क्या था? आज सुबह क्या लिखा था? व्हिच इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ? संस्कार से संसार बनता है. जैसे ही संस्कार डाउन जाएंगे, संसार ने तो डाउन जाना ही जाना है. अब जैसे ही संसार डाउन जाएगा तो संस्कार क्या हो जाएंगे? और डाउन जाएंगे. जैसे ही संस्कार और डाउन जाएंगे, संसार. सो राइट नाउ वी आर ऑन द डाउन स्लाइड. इसलिए अपने कर्मों का शुक्रिया कीजिए जो 3 दिन निकाल कर यहां आए हो. क्योंकि यहां आना मतलब यहां की सेटिंग को चेंज करना, कि अब मैंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैंने कॉन्शियसली किस डायरेक्शन में मूव करना है? ऊपर. हम 3 दिन के लिए नहीं आए हैं यहां. हम 3 दिन में वो सीखने आए हैं जो हम रोज करेंगे जाने के बाद. अगर आपने मंडे के बाद नहीं किया तो कोई चेंज नहीं आने वाला है. 3 दिन किसी को चेंज नहीं कर सकता. 3 दिन किसी को चेंज होने का तरीका सिखा सकता है. इसलिए जो लेफ्ट हैंड पे हैं, वो डे बाय डे डाउन जा रहे हैं. उनको पता भी नहीं है कि वो डाउन जा रहे हैं. और अगर हम उनकी कहानी के साथ इंटेंगल होने लग गए तो हमें डाउन जाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. हम अपने आप डाउन होते जाएंगे. तो डिटैचमेंट मतलब उनकी कहानी से डिटैच्ड, डिटैचमेंट मतलब उनकी वाइब्रेशन से डिटैच. और डिटैच होने से हम उनको शक्ति दे सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है? वो जो कर रहे हैं उसको मन में रिपीट नहीं करना. ठीक है? इजी? इतना कर सकते हैं? यस, एवरीबॉडी क्लियर हो गया? सपोज किसी ने झूठ बोला है, हम 10 बार रिपीट करते हैं माइंड में. वो झूठ कैसे बोल सकता है? ऐसे कैसे वो झूठ बोल सकता है? इतना सब सिखाया, अभी भी वो झूठ बोलता है. ऐसे ही वो झूठ बोलता रहेगा तो क्या? 10 टाइम्स रिपीट कर दिया तो किसकी वाइब्रेशन पे चले गए? उसने झूठ बोला है, नॉलेज आ गई, फुल स्टॉप. उसको रिपीट करके अपनी स्टोरी को नहीं बिगाड़ना है. क्योंकि जितना आप उसके कर्म को रिपीट करेंगे, आप उसकी वाइब्रेशन के साथ क्या होते जा रहे हैं? इंटेंगल होते जा रहे हैं. दिख गया झूठ बोला है, अब डिटैच होकर उसको कौन सी शक्ति की जरूरत है वो संकल्प क्रिएट कर लीजिए. और जैसे ही आप वो हाई एनर्जी संकल्प क्रिएट करेंगे, आप ऊपर चले जाएंगे. ना उसकी स्टोरी को रिपीट करना है अपने माइंड पे, ना उसकी गलती को रिपीट करना है अपने माइंड पे, ना उसके मन की स्थिति को रिपीट करना है अपने माइंड पे. उसको जो बनाना है सिर्फ वो रिपीट करना है अपने माइंड पे. ठीक है? तो अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, आप क्या रिपीट करेंगे अपने माइंड पे? अगर आपके काम में कोई बार बार बाधा डाल रहा है, विघ्न डाल रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे उसके अपने माइंड में? क्या क्रिएट करेंगे उसके लिए? कोई आपको तंग कर रहा है बार बार, आप क्या रिपीट करेंगे अपने माइंड में? ये क्लियर हो गई है इक्वेशन? बिल्कुल. क्या क्या नहीं रिपीट करना है? हमें ये करना है, अभी डिस्कनेक्ट करना है. उसके लिए क्या क्या नहीं रिपीट करना है? पहली चीज, क्या नहीं रिपीट करना है? वो जो कर रहे हैं वो नहीं रिपीट करना है. पहले अपने माइंड में नहीं रिपीट करना, और फिर लोगों से बार बार वो बात नहीं करनी. आपको पता है उसने क्या किया? आपको पता है उसने क्या किया? एवरी टाइम वी आर रिपीटिंग दैट, हम कहां जा रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम की वजह से नीचे नहीं जा रहे हैं. किसकी वजह से नीचे जा रहे हैं? दूसरों की प्रॉब्लम रिपीट करने की वजह से नीचे जा रहे हैं. कलयुग के एंड में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देने वाली है. कलयुग के एंड में बहुत सारी गलतियां नहीं, बहुत सारे पाप दिखाई देने वाले हैं। अगर सबकी गलतियां और सबके पाप यहां रखने हैं तो खुद गलती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों की गलतियां देखकर ही नीचे चले जाएंगे। डॉक्टर ने इलाज करना है, डॉक्टर ने दूसरे की बीमारी को अपने शरीर में नहीं डालना है, ठीक है? और डॉक्टर को इलाज करने से पहले क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को इलाज करने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले अपने को प्रोटेक्ट करके फिर इलाज करना पड़ता है। अगर बिना प्रोटेक्ट करे इलाज करने चला गया तो उसकी बीमारी मेरी। अब वहां पे प्रोटेक्शन फिजिकल है, यहां पे प्रोटेक्शन वाइब्रेशनल है, सिर्फ एक थॉट चेंज करने हैं। तो जिस चीज की उस आत्मा में कमजोरी है, आप उसकी ब्लेसिंग उनके लिए क्रिएट कर दो और एक ही थॉट क्रिएट करो, बस, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उस आत्मा के अंदर खुशी की कमी है, उस आत्मा के अंदर कंटेंटमेंट की कमी है, वो संतुष्ट नहीं है। तो आप सिर्फ एक ब्लेसिंग क्रिएट करेंगे, यू आर अ ब्यूटिफुल कंटेंटेड सोल, बस, फुल स्टॉप। कहानी हमारी वहीं पूरी होती है। तो हमारी कहानी में क्या रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ एक हाई वाइब्रेशनल पावरफुल ब्लेसिंग, ठीक है? और जैसे ही हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे उनके लिए, हम कहां मूव होने लग जाएंगे, हम कहां मूव होने लगेंगे। इस समय बहुत बहुत ध्यान रखना, अगर कोई नीचे जाएगा और आपने उसका हाथ पकड़ा होगा, आप उसके साथ नीचे जाने वाले हैं। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है इस टाइम नीचे जाने के लिए। सिर्फ किसी के साथ उलझे हुए होंगे तो नीचे चले जाएंगे। और एक और चीज करके देखना, अगर किसी को बहुत ज्यादा आपके साथ टग ऑफ वॉर खेलने का शौक है, वर्क प्लेस में होता है ना, होता है ना, तो जब आप राजयोग रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास खुशी और कंटेंटमेंट एक आपका नेचुरल संस्कार बनना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी इतनी कि जो आपके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलो बताएं क्या करेंगे। टग ऑफ वॉर याद है ना, कैसे खींचते हैं, दोनों जगह ने रस्सी खींचते हैं, तो दोनों एक इधर गिरता है एक उधर गिरता है, लेकिन रस्सी खींचते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कौन कौन रेडी अपनी साइड की रस्सी छोड़ने के लिए, जो उठा 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 हाथ देखे तो अपनी साइड की रस्सी छोड़ने के लिए कौन रेडी है। और रस्सी छोड़ना मतलब क्या छोड़ना है, रस्सी छोड़ना मतलब क्या छोड़ना है, उनको छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना, उनके साथ तो काम करना है। रस्सी छोड़ना मतलब क्या, ये जो सारी चीजें होती है ना हमारी प्रोफेशनली भी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब शॉर्ट टर्म है, सब शॉर्ट टर्म है। एक कॉन्फ्रेंस में दूसरे से आगे, एक अवार्ड में दूसरे से आगे, एक डेजिग्नेशन में दूसरे से आगे, एक डिपार्टमेंट हेड, सब बहुत शॉर्ट टर्म है। हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि जो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है वो बहुत छोटी हो जाती है उसके सामने, बहुत छोटी हो जाती है। वो इंपॉर्टेंट है, आसानी से मिल रहा है तो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेकिन अगर कोई उसके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है, बोलो ले लो जी, आप ले लो। आपने रोड पे कभी कभी देखा है कि कुछ लोग ऐसा जबरदस्ती आगे निकलने की कोशिश करते हैं अपनी गाड़ी के साथ, देखा है, देखा है ना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू उस टाइम पर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये आगे जाएगा तो वो और आगे उतना जाएंगे, फिर वो तो पहले से आगे जाना चाहता था तो वो और, ये करने में दूसरे का संस्कार हमारा संस्कार बनने लग जाता है, और वो तो कंफर्टेबल है नहीं, हम डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देते हैं। और उस समय अगर एक जना 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाए और कहे, तो आपको दोनों में से डिग्निफाइड कौन सा लग रहा है, आपको दोनों में से डिग्निफाइड कौन सा लग रहा है, रिस्पेक्टफुल कौन सा वाला लग रहा है आपको, जो रुक जाता है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आपने 30 सेकेंड रुक कर किसी को आगे कर दिया तो चार लोग आपको बोलेंगे ये क्या किया। तो हमेशा याद रखना, कलयुग में राय भी कलयुग की ही मिलेगी। कलयुग में राय कलयुग की ही मिलेगी, क्योंकि कलयुग मतलब अचीवमेंट में श्रेष्ठ होना चाहिए और सत्युग मतलब संस्कारों में श्रेष्ठ होना चाहिए। इतनी अचीवमेंट मिलने के बाद भी आज सुबह तो हाथ इसी के लिए उठाया ना कि खुशी चाहिए, हाथ उठाया ना आज सुबह की खुशी चाहिए। सो ओपन अप टू द रियलिटी कि ये सब अचीवमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे घर में खुशी नहीं लेकर आते, ये सिर्फ एक अचीवमेंट होती है। तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारी खुशी को खत्म कर रहा है, एक सेकेंड में उस खिलौना को उसको दे दो, एक सेकेंड में खिलौना उसको दे दो। और सीक्रेट ये है, जो टग ऑफ वॉर में रस्सी छोड़ेगा वो लगेगा कि वो छोड़ेगा, लेकिन वो इतना आगे जाएगा जो उसने नहीं सोचा था कि वो कभी आगे जा सकता है। वो तो करके देखना पड़ेगा, वो करके देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए छोड़ने की क्या चाहिए, छोड़ने की क्या चाहिए, हिम्मत। लेकिन हिम्मत बहुत आसानी से आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली हमने उस रस्सी को पकड़ के रखा था सिर्फ खुशी के लिए, लेकिन जब मैं आत्मा वैसे ही खुश रहने लग जाती हूँ तो मुझे ऐसी रस्सियां चाहिए नहीं होती खुश रखने। उनके तो ये लो, हमारे पास तो भरपूर खुशी है, आप ये रस्सी ले लो। इंटैंगल नहीं होना है किसी से, इसको लिख के रख लो और कल सुबह तक चेक करना मैं आत्मा किस किस के साथ इंटैंगल्ड हूं अपने अंदर। इंटैंगल्ड है वो रस्सियां खींच रही हैं, मेरी शक्ति को नीचे लेकर जा रहे हैं। एक किसी को मुझसे आगे जाना है, एक कोई मेरे आगे बैठना चाहता है, एक किसी को डेजिग्नेशन मेरे से, बोलो सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, आओ आगे, आप ही बैठो, हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर देखो स्थिति कहाँ जाती है। और आपको क्या लगता है, जो दूसरों को आगे बिठाएंगे, मतलब जीवन में जो दूसरों को आगे करेंगे, क्या वो पीछे रह जाएंगे, क्या वो पीछे रह जाएंगे? नहीं है ना। तो जो दूसरों को आगे करेंगे वो अपनी क्षमता से बहुत बहुत आगे निकल कर जाएंगे। चलो सीधा होकर बैठे एक मिनट। और ये होमवर्क आज करना है, अपने क्लोज सर्कल की हर सोल को आज देख लेना है। पहले फैमिली को देखना है, फिर प्रोफेशनल में भी देखना है, और चेक करना है कौन कौन सी आत्मा थोड़ा सा वाइब्रेशनली कहाँ है, नीचे, और उनके लिए एक ब्लेसिंग थॉट क्रिएट करने हैं, याद रखते हुए कि जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वो हमारी स्टोरी है। एंड आई एम अ हीलर, आई एम एन एनर्जाइजर, दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाले, दूसरों को शक्तिशाली बनाने वाले, दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने वाले, सबको सुख देने वाले, मैं आत्मा सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूं। मेरे हर संकल्प, हर शब्द ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग उनकी पावर है। हर एक को देखें, दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी। उन सबको शक्ति देना ये मेरी सेवा है। बिल्कुल इस साइलेंस में बैठेंगे, दीदी आएंगी, दो मिनट लगेगा, हम इस दो मिनट को यूज करेंगे। घर में कौन कौन सी सोल्स हैं उनको देखेंगे, उनके संस्कार को देखेंगे, उनके लिए ब्लेसिंग बनाएंगे, और फिर हॉस्पिटल को देखेंगे। यूज दीज टू मिनट्स। और आज रात को सोने से पहले ब्लेसिंग जरूर लिखना है उनकी।